ये दुनिया सैकड़ों कहानियों का मजमुआ है। हर शख्स में एक कहानी है और उस कहानी में कई कहानियां। मानो कहानियों का बड़ा सा ढेर हो जिसमें कुछ कहानियां अनसुनी रह जाती हैं। स्टोरी टेलिंग की जब बात हो रही है, aren't we all crazy about stories? बचपन में चाहे वो नानी अम्मी का कहानियां सुनाना हो या कार्टून्स में मजेदार कहानियों का लुत्फ उठाना हो, चाहे वो फिल्म्स हो, रेडियो शोज हो या दोस्तों के साथ गप्पे मारना क्यों ना हो, उनमें एक कहानी जरूर होती है और उसी से हमारी दिलचस्पी कायम रहती है। आदाब, मैं हूँ फौकिया वाजिद और सोच कास्ट पे आपके सामने हाजिर है उर्दू पॉडकास्ट आओ सुने, जिसमें हम आपको कुछ दिलकश कहानियों से रूबरू करवाएंगे। कहानी का नाम है बुरके, जिसको लिखा है सादत हसन मंटो ने। जहीर जब थर्ड ईयर में दाखिल हुआ तो उसने महसूस किया कि उसे इश्क हो गया है, और इश्क भी बहुत अशद किस्म का, जिसमें अक्सर इंसान अपनी जान से भी हाथ धो बैठता है। वो कॉलेज से खुशी खुशी वापस आया कि थर्ड ईयर में उसका पहला दिन था। जो ही वो अपने घर में दाखिल होने लगा, उसने एक बुर्का पोश लड़की देखी जो टांगे में से उतर रही है। उसने टांगे में से उतरती हुई हजारहा लड़कियां देखी थी, मगर वो लड़की जिसके हाथ में चंद किताबें थीं, सीधे उसके दिल में उतर गई। लड़की ने टांगे वाले को किराया अदा किया और जहीर के साथ वाले मकान में चली गई। जहीर ने सोचना शुरू कर दिया कि इतनी देर वो उसकी मौजूदगी से गाफिल कैसे रहा। असल में जहीर आवारा मनुष्य नौजवान नहीं था, उसको सिर्फ अपनी जात से दिलचस्पी थी। सुबह उठे, कॉलेज गए, लेक्चर सुने, घर वापस आए, खाना खाया, थोड़ी देर आराम किया और आमोख्ता दोहराने में मसरूफ हो गए। यूं तो कॉलेज में कई लड़कियां थीं, उसकी हम जमात, मगर जहीर ने कभी उनसे बातचीत नहीं की थी। ये नहीं कि वो बड़ा रूखा फीका इंसान था, असल में वो हर वक्त अपने पढ़ाई में मशगूल रहता था। मगर उस रोज जब उसने उस लड़की को टांगे पर से उतरते देखा तो वो पॉलिटिकल साइंस का ताजा सबक बिल्कुल भूल गया। ख्वाजा हाफिज के तमाम नए अशार के मानी उसके जहन से फिसल गए और वो उन हाथों के मुतालिक सोचने लगा जिनमें किताबें थीं। पतली पतली सफेद उंगलियां, एक उंगली में अंगूठी, दूसरा हाथ जिसने एक टांगे वाले को किराया अदा किया, वो भी वैसा ही खूबसूरत था। जहीर ने उसकी शक्ल देखने की कोशिश की, मगर नकाब इतना मोटा था कि उसे कुछ दिखाई न दिया। लड़की तेज तेज कदम उठाते उसके साथ वाले मकान में दाखिल हो गई और जहीर खड़ा देर तक सोचता रहा कि इतना कम फासला होने के बावजूद वो क्यों उसकी मौजूदगी से गाफिल रहा। अपने घर में जाकर उसने पहला सवाल अपनी माँ से ये किया, हमारे पड़ोस में कौन रहते हैं? उसकी माँ के लिए ये सवाल बहुत ताज्जुब खेज था। क्यों? मैंने ऐसे ही पूछा है, उसकी माँ ने कहा। मुहाजिर हैं हमारी तरह? जहीर ने पूछा, कौन है, क्या करते हैं? माँ ने जवाब दिया, बाप बेचारों का मर चुका है, माँ थी वो उम्र के हाथों माजूर थी, अब तीन बहनें और एक भाई है, भाई सबसे बड़ा है, वही बाप समझो वही माँ, बहुत अच्छा लड़का है, उसने अपनी शादी भी इसलिए नहीं की कि इतना बोझ उसके कंधों पर है। जहीर को तीन बहनों के इस बोझ से कोई दिलचस्पी नहीं थी जो उसके इकलौते भाई के कंधों पर था। वो सिर्फ उस लड़की के बारे में जानना चाहता था जो हाथ में किताबें लिए साथ वाले घर में दाखिल हुई थी। ये तो जाहिर था कि वो उन तीन बहनों में से एक थी। खाने से फारिग होकर वो पंखे के नीचे लेट गया। उसकी आदत थी कि वो गर्मियों में खाने के बाद एक घंटे तक जरूर सोया करता, मगर उस रोज उसे नींद न आई। वो उस लड़की के मुतालिक सोचने लगा जो उसके पड़ोस में रहती थी। कई दिन गुजर गए मगर उसकी मुठभेड़ न हुई। कॉलेज से आकर उसने सैकड़ों मरतबा छत पर घंटों धूप में खड़े रहकर उसकी आमद का इंतजार किया, मगर वो न आई। जहीर मायूस हो गया। वो बहुत जल्द मायूस हो जाने वाला आदमी था। उसने सोचा कि ये सब बेकार है, मगर इश्क कहता था कि ये बेकार ही सबसे बड़ी चीज है। इश्क में सबसे पहले आशिक को इस चीज से वास्ता पड़ता है। जो घबराया वो गया। चुनांचे जहीर ने अपने दिल में अहद कर लिया कि पहाड़ भी टूट पड़े तो वो घबराएगा नहीं, अपने इश्क में साबित कदम रहेगा। बहुत दिनों के बाद जब वो साइकिल पर कॉलेज से वापस आ रहा था, उसने अपने आगे एक टांगा देखा जिसमें एक बुर्का पोश लड़की बैठी थी। उसका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त निकला क्योंकि ये वही लड़की थी। टांगा रुका, जहीर साइकिल पर से उतर पड़ा। लड़की के एक हाथ में किताबें थीं, दूसरे हाथ से उसने टांगे वाले को किराया अदा किया और चल पड़ी। मगर टांगा वाला पुकारा, ए बीबी जी, ये क्या दिया तुमने? उसके लहजे में बदतमीजी थी। लड़की रुकी, पलटकर उसने टांगे वाले को अपने बुर्के के नकाब से देखा। क्यों, क्या बात है? टांगे वाला नीचे उतर आया और हथेली पर अठन्नी दिखाकर कहने लगा, ये आठाने नहीं चलेंगे। लड़की ने महीन लर्जा आवाज में कहा, मैं हमेशा आठाने ही दिया करती हूं। टांगे वाला बड़ा वाहियात किस्म का आदमी था। वो बोला, वो आपसे रियायत करते होंगे मगर मैं नहीं करता। ये सुनकर जहीर को तैश आ गया, साइकिल छोड़कर आगे बढ़ा। आओ देखता हूं, एक मुक्का टांगे वाले की तोड़ी के नीचे जमा दिया। वो अभी संभला भी नहीं था कि एक और उसके दाहिनी कनपट्टी पर जोर का दिया और वो बिलबिला उठा। इसके बाद जहीर उस लड़की से, जो जाहिर है घबरा गई थी, मुखातिब हुआ, आप तशरीफ ले जाइए, मैं इस हरामजादे से निमट लूंगा। लड़की ने कुछ कहना चाहा, शायद शुक्रिये के अल्फाज थे जो उसकी जुबान की नोक पर आकर वापस चले गए। वो चली गई। 10 कदम ही तो थे मगर जहीर को पूरे 20 मिनट इस टांगे वाले से निमटने में लगे, जो बड़ा लीचड़ कसम का टांगे वाला था। जहीर बहुत खुश था कि उसने अपनी महबूबा के सामने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया। उसने टांगे वाले को खूब पीटा था और उसने ये भी देखा था कि वो बुर्का पोश लड़की अपने घर में खिड़की के पीछे उसे देख रही है। ये देखकर जहीर ने 2 घूंसे और जमा दिए थे। इसके बाद जहीर सर से पैर तक उस बुर्का पोश की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। उसने अपनी वालिदा से मजीद इस्तफसार किया तो उसे मालूम हुआ कि उस लड़की का नाम यास्मीन है। 3 बहनें हैं, बाप इनका मर चुका है, माँ जिंदा है। मामूली सी जायदाद है जिसके किराए पर इन सब का गुजारा हो रहा है। जहीर को अब अपनी माशूका का नाम मालूम हो चुका था, चुनांचे उसने यास्मीन के नाम कई खत कॉलेज में बैठकर लिखे मगर फाड़ डाले। लेकिन एक रोज उसने एक तवील खत लिखा और तहिया कर लिया कि वो उस तक जरूर पहुंचा देगा। बहुत दिनों के बाद जबकि जहीर साइकिल पर कॉलेज से वापस आ रहा था तो उसने यास्मीन को टांगे में देखा। वो उतर कर जा रही थी। लपक कर वो आगे बढ़ा, जेब से खत निकाला और हिम्मत और जुरत से काम लेकर उसने कागज उसकी तरफ बढ़ा दिए। ये आपके कुछ कागज टांगे में रह गए थे। यास्मीन ने वो कागज ले लिए, नकाब का कपड़ा सरसराया, शुक्रिया, ये कहकर वो चली गई। जहीर ने इत्मीनान की सांस ली लेकिन उसका दिल धक धक कर रहा था, इसलिए कि उसे मालूम नहीं था कि उसके खत का क्या हश्र होने वाला है। वो अभी इस हश्र के मुतालिक सोच ही रहा था कि एक और टांगा उसकी साइकिल के पास रुका। उसमें से एक बुर्का पोश लड़की उतरी। उसने टांगे वाले को किराया अदा किया। ये हाथ जिससे किराया अदा किया गया था वैसा ही था जैसे उस लड़की का था जिसको पहली मर्तबा जहीर ने देखा था। किराया अदा करने के बाद ये लड़की उस मकान में चली गई जहां यास्मीन गई थी। जहीर सोचता रह गया, लेकिन उसको मालूम था कि 3 बहनें हैं। हो सकता है कि ये लड़की यास्मीन की छोटी बहन हो। खत देकर जहीर ने ये समझा कि आधा मैदान मार लिया है। पर जब दूसरे रोज उसे कॉलेज जाते वक्त एक छोटे से लड़के ने कागज का एक पुर्जा दिया तो उसे यकीन हो गया कि पूरा मैदान मार लिया गया है। लिखा था, आपका मोहब्बत नामा मिला। जिन जज्बात का इजहार आपने किया है उसके मुतालिक मैं आपसे क्या कहूँ। मैं इससे आगे कुछ नहीं कह सकती, मुझे अपनी लौंडी समझिए। ये रुका पढ़कर जहीर की बांछें खिल गई। कॉलेज में कोई पीरियड अटेंड नहीं किया, बस सारा वक्त बाग में घूमता और उस रुके को पढ़ता रहता। दो दिन गुजर गए मगर यास्मीन की मुठभेड़ न हुई। उसको बहुत कोफ्त हो रही थी, इसलिए कि उसने एक लंबा चौड़ा मोहब्बत भरा खत लिख दिया था और वो चाहता था कि जल्द से जल्द उस तक पहुंचा दे। तीसरे रोज आखिरकार वो जहीर को टांगे में नजर आई। जब वो किराया अदा कर रही थी, साइकिल एक तरफ गिरा के वो आगे बढ़ा और यास्मीन का हाथ पकड़ लिया। हुजूर, ये आपके चंद कागजात टांगे में रह गए थे। यास्मीन ने गुस्से से भरे हुए झटके के साथ अपना हाथ छुड़ाया और तेज लहजे में कहा, बदतमीज कहीं के, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये कहकर वो चली गई और जहीर के मोहब्बत भरे खत के कागज सड़क पर फड़फड़ाने लगे। वो सख्त हैरत जदा था कि वो लड़की जिसने कहा था कि मुझे अपनी लौंडी समझिए, इतने रुखे से क्यों पेश आई है। लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद ये भी अंदाज़े दिल रुबाना है। दिन गुजरते गए मगर जहीर के दिलो दिमाग में यास्मीन के ये अल्फाज हर वक्त गूंजते रहते, बदतमीज कहीं के, शर्म नहीं आती तुम्हें। लेकिन इसके साथ ही उसे उस रूखे अल्फाज याद आते जिसमें ये लिखा था, मुझे अपनी लौंडी समझिए। जहीर ने इस दौरान में कई खत लिखे और फाड़ डाले। वो चाहता था कि मुनासिब व मौजू अल्फाज में यास्मीन से कहे कि उसने बदतमीज कहकर उसकी और उसकी मोहब्बत की तौहीन की है, मगर उसे ऐसे अल्फाज नहीं मिलते थे। एक दिन जबकि वो बाहर सड़क पर अपनी साइकिल के अगले पहिए में हवा भर रहा था, एक लड़का आया और उसके हाथ में एक लिफाफा देकर भाग गया। हवा भरने का पंप एक तरफ रख कर उसने लिफाफा खोला। एक छोटा सा रुका था जिसमें ये चंद बातें थीं। आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए? मोहब्बत के इतने बड़े दावे करने की जरूरत ही क्या थी? खैर, आप भूल जाएं तो भूल जाएं, आपकी कनीज आपको कभी भूल नहीं सकती। जहीर चकरा गया, उसने ये रुका बार बार पढ़ा। सामने देखा तो यास्मीन टांगे में सवार हो रही थी, साइकिल वही लिटाकर वो उसकी तरफ भागा। टांगा चलने ही वाला था कि उसने पास पहुंचकर यास्मीन से कहा, तुम्हारा रुका मिला है, खुदा के लिए तुम अपने को कनीज और लौंडी ना कहा करो, मुझे बहुत दुख होता है। यास्मीन के बुर्के की नकाब उछली। बड़े गुस्से से उसने जहीर से कहा, बदतमीज कहीं के, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं आज ही तुम्हारी माँ से कहूंगी कि तुम मुझे छेड़ते हो। टांगा चल ही रहा था, थोड़ी देर में निगाहों से ओझल हो गया। जहीर रुका हाथ में पकड़े सोचता रह गया कि ये क्या मामला है। मगर फिर उसे ख्याल आया कि माशूकों का रवैया कुछ इस किस्म का होता है, वो सरे बाजार इस किस्म के मुजाहिरों को पसंद नहीं करते, खतों किताबत के जरिए ही सारी बातें हो जाया करती हैं। चुनांचे उसने दूसरे रोज एक तवील खत लिखा और जब वो कॉलेज से वापस आ रहा था, टांगे में यास्मीन को देखा। वो उतर कर किराया अदा कर चुकी थी और घर की जानिब जा रही थी। खत उसके हाथ में दे दिया, उसने कोई एहतजाज न किया। एक नजर उसने अपने बुरके के नकाब में से जहीर को देखा और चली गई। जहीर ने महसूस किया कि वो अपने नकाब के अंदर मुस्कुरा रही थी और ये बड़ी हौसला अफजा बात थी। चुनांचे दूसरे रोज सुबह जब वो साइकिल निकालकर कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा था, उसने यास्मीन को देखा। शायद वो टांगे वाले का इंतजार कर रही थी। दाहिने हाथ में किताबें पकड़ी थी, बायां हाथ झूल रहा था। मैदान खाली था, यानी उस वक्त बाजार में कोई न था। जहीर ने मौका गनीमत जाना, जुर्रत से काम लेकर उसके पास पहुंचा और उसका हाथ पकड़ लिया और बड़े रोमानी अंदाज में उससे कहा, तुम भी अजीब लड़की हो, खतों में मोहब्बत का इजहार करती हो और बात करें तो गालियां देती हो। ज़हीर ने बामुश्किल ये अल्फाज खत्म किए ही होंगे कि यास्मीन ने अपनी सैंडल उतारकर उसके सर पर धड़ाधड़ मारना शुरू कर दिया। ज़हीर बौखला गया। यास्मीन ने उसको बेशुमार गालियां दी, मगर वो बौखलाहट के बाइस सुन न सका। इस ख्याल से कि कोई देख न ले, वो फौरन अपने घर की तरफ पलटा, साइकिल उठाई, अपनी किताबें वगैरह स्टैंड के साथ जमा कर कॉलेज का रुख करा कि टांगा आया। यास्मीन उसमें बैठी और चली गई। ज़हीर ने इत्मीनान की सांस ली। इतने में एक और बुरका पोश लड़की नामुदार हुई, उसी घर में से जिसमें से यास्मीन निकली थी। उसने ज़हीर की तरफ देखा और उसको हाथ से इशारा किया, मगर ज़हीर डरा हुआ था। जब लड़की ने देखा कि ज़हीर ने उसका इशारा नहीं समझा, तो वो उससे करीब होके गुजरी और एक रुका गिरा कर चली गई। ज़हीर ने कागज का वो पुर्जा उठाया, उस पर लिखा था, तुम कब तक मुझे यूं ही बेवकूफ बनाते रहोगे? तुम्हारी माँ मेरी माँ से क्यों नहीं मिलती? आज प्लाजा सिनेमा पर मिलो, पहला शो 3 बजे, परवीन। शुक्रिया।